نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Synopsis of Quran Quran کی جھلکیاں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ آج اس میں ہم پارا نمبر پانچ والمحصنات کریں گے یہ پارا بھی اپنی جگہ بڑا خوبصورت پارا ہے والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم اس پورے پارے کے سنوپسس لے لیجئے پارا نمبر پانچ سورت نساء کی بیچ کی 124 آیات پہ محیط ہے آپ کو پیچھے ایک پارا یاد ہے جس میں پورے پارے میں ایک ہی سورت تھی یہ آپ کا کوئز بن رہا ہے بولیے پارا نمبر ٹو پورا سورت بکرا پہ تھا اسی طرح سے پارا نمبر پانچ پورا سورت نساء پہ یہ باتیں لکھیں اور یہ کوئز میں شامل کریں آپ لوگ بھی نوٹ کیا کریں ان کو اس پورے پارے میں خانہ داری کی تدابیر یعنی گھر کیسے چلائے جاتے ہیں اللہ کرے ہماری بچیاں پڑھ جائیں اور گھر اچھے سے اچھے چلیں پھر عدل و احسان کی بات ہے جہاد کی رغبت ہے منافقین کی مذمت ہے قتل کی سزائیں ہجرت اور صلاۃ الخوف کے مسائل ہیں ایک قصہ ہے اس میں اور وہ قصہ کیا ہے کہ ایک شخص نے برادری اور خاندان کا نام لے کر ایک جھوٹے بندے کا سائڈ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک قسم کا گٹھ جوڑ ہو گیا تھا ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ لیجئے کہ معاشرے میں کیوس کرنے والا تھا دو تین رکوع اسی کے متعلق ہے اور پھر آخر میں چند نصیحتیں ہیں پورے پارہ نمبر پانچ کا خلاصہ اگر ہم کر لیں پچھلے پارے سے اس کا تعلق بھی لے لیجئے ہم نے 12 محرمات پڑھی حرمت علیکم امہاتکم سے لے کر اس پارے میں والمحصنات من النساء ایک اور کیٹیگری ایڈ کر دی گئی کہ ہر شادی شدہ عورت ایوری میرڈ وومین از حرام آن آل مین یعنی کیا پتہ چلا کہ حرمت والے رشتوں میں ایک عورت جو شادی شدہ ہے آج اللہ معاف کرے ہمارے ڈراموں میں جو مین تھیم میرے تک لوگوں نے دیا اور مجھے اس کے کچھ کلپس بھی بھیجے کہ اب تو ہر ڈرامے کے بیچ میں اس کی بیوی اس کا شوہر اس کا شوہر اس کی بیوی یعنی کنواروں کے عشق اور محبتوں سے لوگ اب تھک گئے ہیں اب میرٹ کی محبتیں اور اللہ معاف کرے تو والمحصنات کے اندر یہ پیغام ہے کہ شادی عورت کو ایک حصار میں لے لیتی ہے کوئی مرد اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور ہاں یہ پارہ اس لیے بھی ایک اہم پوائنٹ ہے اس کا پہلے ہی رکوع نوٹ کر لیں الگ سے نکاح کی شرائط کن چیزوں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کس سے نہیں رکوع نمبر ایک اس میں اور چونکہ سورت نساء میں مدنی دور کا ایک خاص دور ہے جس میں منافقین کا قصہ ہے تو ان کے ہیلے اور بہانے بھی ہے آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 24 والمحصنات من النساء شادی شدہ عورت سے نکاح منع ہے آیت 25 کنیزوں سے نکاح کی سہولت ہے حکم نہیں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا نکاح کے پانچ ارکان ہیں ان آیات میں خواہش پرست ہر چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں تاکہ اپنی خواہشات پوری کریں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے اگر تم ان سے بچو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ معاف کرے گا پھر ایکویلٹی کی بات ہے عورت اور مرد میں کون کیا کرے گا یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں اس بارے میں مرد کو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اور عورت کو عزت عصمت کی حفاظت کرنی ہے پھر بگڑی ہوئی عورت کو کیسے سمجھایا جائے اور بعض منفی عادات جو کہ مردوں میں ہوتی ہیں اس کا بھی ذکر اسی بارے میں آئے گا آئے 26 سے 28 شریعت اللہ کی رحمت ہے بہت پیاری آیت ہے یہ بھی جب بھی کبھی ہم سنیں گے پڑھیں گے 29 to 30 مال اور جان کی حرمت یعنی نہ کسی کا مال ناجائز کھاؤ نہ اس کی جان لو آئے 31 کو الگ سے لکھیے اپنی اس لسٹ میں کبیرہ گناہ کون سے ہیں کبائر کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے 32 دوسروں سے حسد مت کرو کیونکہ جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے آیت 33 میں قانون وراثت حکمت اور عدل کے مطابق ہے یعنی وراثت کی جو بانٹ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے تم اس کے اندر اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتے یہ ہے آیت 34-35 یہ بھی بہت اہم آیت ہے شوہر اور بیوی کی ذمہ داریاں اور حقوق نیک بیوی اپنے شوہر کی تابع دار ہوتی ہے आयत नंबर 36 इस्लाम की माशरती तालीमात का खुलासा इन नटशेल आप कह सकते हैं। 37-40 बुखल और रिहाकारी की मजम्मत, यानी बुखल क्या होता है कि बंदा खर्च कर भी सकता है और फिर भी नहीं करता सिर्फ इस वजह से कि कहीं मेरी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। मतलब यह है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के रास्ते में हमेशा दिल खोल कर खर्च भी करे और अपनी जिम्मेदारियों को भी आसन तौर पे पूरा करे। आयत नंबर 41-42 अल्लाह के रसूल की अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ गवाही, ये है वो आयत जो आपने कभी दरसों में चलते फिरते सुना होगा कि अल्लाह के नबी ने इब्ने मसूद से कहा मुझे कुरान सुनाओ, फिर वो सुना रहे थे तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे, आप रोते जा रहे थे रोते, ये आयत थी। हमें तो पता नहीं है ना, इसलिए हम हंसते बोलते खाते पीते कुरान पढ़ जाते हैं, लेकिन एक एक आयत पे पूरी पूरी रात अल्लाह के नबी कई दफ़ा रोया करते थे। आयत 43 शराब की हुरमत के हवाले से दूसरा हुक्म। पहला हुक्म कहाँ आया था? पारा नंबर 2 में। यहाँ आप दूसरा आ गया और आगे तीसरा आएगा, तो आपके पास पूरी तरतीब मौजूद हो गई कि शराब कितने मराहिल में हराम हुई। आयत 44-46 तक यहूद की हरकत हैं। 47 यहूद के लिए वार्निंग यानी तंबीह है। इन सारी आयत को समअप करें तो रियाकारी अल्लाह से दूर कर देती है। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही काम आएगी। आखरत की कुछ बातें और मनमानी ज़िंदगी गुजारने वालों की हसरतों का तذکرہ इस हिस्से में। फिर एक और चीज़ हमने पढ़ी है कि मजहबी तबके में जब ख़यानत शुरू हो जाती है तो माशरे बिगड़ जाते हैं, और उलमा यहूद चूँकि ख़ुद पसंद थे इसलिए उन्होंने अवाम को जाहिल रखना पसंद किया। आयत 48 शिर्क नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। ये वो आयत है जिसको आपने कभी किसी भी दर्स में किसी स्कॉलर स्पीकर से सुना हो कि अल्लाह शिर्क के सिवा हर गुना माफ़ कर देगा। इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरक बिह। 49-50 यहूद का झूठा दावा, और 51-53 हिदायत पर कौन है, यानी तुम अपने आप को ज़्यादा नेक ना कहो, अल्लाह को मालूम है कि तुम कितने हिदायत पर हो। 54-55 हसद की बुराई, और 56-57 ये भी बहुत डराने वाली आयत है। इन्नल्लज़ीन कफरू बी आयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा। वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का कुफर किया अनकरीब हम उनको आग में झोंकेंगे, फिर उनकी खालें जलेंगी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जहन्नमियों की खालों के जल जल के गिरने का अमल एक एक दिन में 70-70 बार होगा। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा दे तो अल्लाह जहन्नमियों की जली हुई खाल को नई खाल से बदल देगा। 58-59 अमानतों की अदायगी करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, अल्लाह ने जो तुम्हें काम दिए हैं उनको आसान तरीके पे करो। इस पूरे हिस्से में हमने क्या सीखा कि हर अहद एक अमानत है, जिम्मेदारियों को एहसान के दर्जे पे करेंगे अल्लाह आपको और बड़ी जिम्मेदारियां दे देगा, ढीले हो जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी भी किसी और को दे देगा। और उलिल अम्र यानी जो अल्लाह और रसूल के बाद बड़े उमरा हैं या जो हुक्मरान हैं या मजहबी रहनुमा हैं उनकी वो बात मानी जाएगी जो अल्लाह और रसूल की बात के अंदर होगी। और इसी तरह से मुनाफिक के लिए इनफाक मुश्किल है। दो लफ्ज़ लिखिए, इनफाक, अलिफ गिरा दें, निफाक। मुनाफिक कब होता है बंदा? जब इनफाक छोड़ देता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना उसको मुश्किल लगता है, आप ये कह सकते हैं। तो क्या पता चला कि ऐसी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती। फिर आयत नंबर 60-63 को दोहरा लीजिए, अल्लाह के रसूल की इताअत से गुरेज, ये मुनाफिकाना रवैया है। आयत 64-68 रसूलुल्लाह के फ़ैसले को ना मानने वाला मोमिन नहीं। इसको भी ज़रा समझ लें, आज हम नमाज में, रोज़ों में, दाढ़ी की लंबाई में, टखनों से ऊंची शलवार में सुन्नतों की बात करते हैं, लाइफस्टाइल में नहीं करते, अपने मामलात में, ख़ानदानी मामलात में नहीं करते, नबी के मिशन पे नहीं चलते। तो इन सारी बातों का खुलासा अगर हम कर दें तो क्या पता चला, सूरत अल फातिहा में दुआ करते हैं ना, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, इस हिस्से में अल्लाह ने हमें पूरी डिटेल बता दी कि वमन युति अल्लाह व रसूल वो लोग जो अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं वही इनाम वाले हैं, और फिर उसकी लंबी डिटेल भी मौजूद है। फिर मुनाफिकीन के कुछ तذکرے, आपके मेरे लिए हुक्म क्या है, दीन की बात खुशी से मानो, और अगर तुम खुशी से नहीं मानोगे तो अल्लाह को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। आयत 69-70, अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदों का तذکرہ, और फिर आयत नंबर 71-73 में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से फ़रार मुनाफ़िकाना तर्ज़े अमल है। आज देख लीजिए पूरी उम्मत की मेजॉरिटी इस निफाक का शिकार है, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करे। 74-76, अल्लाह की राह में जंग करने वाले कभी नाकाम नहीं होते, और दुनिया में जब फ़ायदा मिल जाएगा या आखिरत में मिल जाएगा। आयत 77-78, जुल्म के जवाब में दरगुजर करने का हुक्म है। ये है वो आयत जिसका अक्सर रेफरेंस दिया जाता है कि मक्का में मुसलमानों को हाथ उठाने से रोक दिया गया था, इसलिए तो बिलाल की पुश्त पे कोड़े पड़े और कुछ ना कहा, और इसी तरह मुसलमान जुल्म में रहे। ये है वो आयत जिसकी रोशनी में क्या था, कुफ्फू अईदियकुम, अपने हाथों को बंद रखो, दरगुजर पहले किया, फिर उसके बाद जाकर जब बात ना बनी तो फिर उनके ऊपर बराबरी के तहत के साथ हाथ उठाया गया मदीना में आने के बाद। आय 79-82, अल्लाह ताला की क़ज़ा और कदर से कोई चीज़ बाहर नहीं। माँ साहबा कमिन हसनतिन फ़मीन अल्लाह, यानी जो अल्लाह ने करना होता है वो हो के रहता है, आप जो मर्ज़ी कर लें। इस पर एक वाक़िया भी आता है पर अभी वक्त नहीं, अगर वो सुनाया तो हमारा वक्त ऊपर जाएगा। यहाँ तक कि आयात में हमने क्या सीखा कि जो तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारेगा ना उसकी आखरत अच्छी होगी। किरदार के गाजी बने, गुफ्तार के नहीं, यानी बातों से क्या होता है करके दिखाइए। और दिल के बुग़्ज़ जो भी इंसान दिल में रखता है अल्लाह वो सब जानता है, और अच्छे तरीके से खंदा पेशानी के साथ लोगों को मिला करें, स्माइली फेस के साथ रहा करें। और यहाँ इसी हिस्से में मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी क्या हो, खारिजा पॉलिसी जिसको आप कहते हैं, उसके लिए भी हिंट्स हैं और मुसलमानों को कई आदाब सिखाए गए। इसके बाद आयत नंबर 83-84 में बहुत अहम मौजू है, ख़ास तौर पे आज सोशल मीडिया के दौर में। खबर आगे कर दो चाहे सच्ची है कि झूठी। पहले लोग अफवाहें मुंह से फैलाते थे, अफवाह फाखुन मुंह को कहते हैं, आज का मुंह ये है, एक आवाज़ लगाते हैं पूरी दुनिया में चली जाती है खबर। तो लिखिए बग़ैर तहकीक के खबर आगे ना बढ़ाओ, ख़ास तौर पे जब जंगी हालात हों या दूसरे हों तो बात बड़ी जल्दी आगे जाती है। 83-84 है, और 85 में मैं यशफा शफातन हसना, अच्छी दावत सदक़ा जारिया है और बुरी दावत गुनाह जारिया है। आज आप सिर्फ ये कर सकते हैं अल्लाह के नबी की उस हदीस पे कि जो किसी को नेकी की दावत दे उसको उस बंदे की हर उस नेकी का अजर मिलता है जो करता है, और उसके अजर में कमी नहीं। तो अमल करना चाहते हैं, कल सिर्फ़ एक को साथ ले आइए, बस एक को, ज़्यादा आ जाएं तो बिस्मिल्लाह। आज हमारी गाड़ी में तो एक भी जगह नहीं थी, मैं सोच रही थी कि कितनी जल्दी माशाल्लाह दावत जाती है ना। तो अगर आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद चीज़ है, एटलीस्ट इससे उनका दौरे कुरान सुनने का जहन तो बनेगा ना, और ये एक किस्म का इंडेक्स है। और इसकी डिटेल्स कब शुरू हो रहा है दौरे कुरान, किसी को डेट याद है? 26 फरवरी। चलिए, तो अच्छी दावत सदका जारिया है और बुरी दावत गुनाहे जारिया है। आयत 86, सलाम करने के आदाब। अपने बच्चों के साथ इस आयत की तफसीर सुने, क्योंकि इसमें सलाम करने से मुतल्लिक बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी जो डे टू डे लाइफ में हमारे काम आती हैं। फिर आयत 87-91, दो रुखे लोगों का तذکرہ। यहाँ से आप कह लीजिए कि वो लोग जिनका निफाक खुलेगा, और पारे के अंत तक आप देखिएगा क्या तस्वीर कशी है मुनाफिकों की, यानी मुनाफिकीन के किस्से हैं। 92-93 में कत्ले ख़ता और कत्ले अमद, यानी जानबूझ के किसी को कत्ल किया जाए या गलती से कोई कत्ल हो जाए, उसका बयान है। पिछले दिनों हमारे मुल्क की एक शख्सियत का बेटा इसी जद में आया और कितनी ज़ुबानें खुली। मैं सोचती हूँ कि अगर लोग कुरान पढ़ लें तो कभी अपनी ज़ुबान ना खोलें, अल्लाह ताला हमें फितनों से बचा दे। आयत 94, लोगों के ज़ाहिर पे कयास करो। ये है वो आयत कि जिसमें सहाबी ने कलमा गो को भी कत्ल कर दिया, ये सोच के कि वो जान बचाने के लिए कलमा पढ़ रहे हज़रत उसामा बिन जैद को, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि कल क़यामत के दिन उसका कलमा जब पेश किया जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे। यानी लोगों ने कह दिया मुसलमान है तो आपको उनके पीछे नहीं पड़ना। फिर आयत 95 से 100, हिजरत के फवायद। ये तो आप सुन लें तो आपका दिल ही करेगा कि हम भी अल्लाह के रस्तों में हिजरत करें। और ला यस्तविल कायदून मिनल मोमिनीन, आयत 101, ये भी अलग से लिख लीजिए। आपसे कोई पूछता है कसर नमाज का हुक्म कुरान में किधर है, आप झट से अपनी ये लिस्ट खोल कर देख लीजिएगा, पारा नंबर 5 में आयत नंबर 101 में अहकामात मौजूद हैं। 102 सलातुल खौफ, ये भी एक रेफरेंस बन सकता है। क्या पता चला इन सारी बातों में कि सलातुल कसर हो या सलातुल खौफ हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से रुख्सतें दिखाती हैं। मुसलमानों को इज्तमाईयत का सबक है और नमाज को वक्त पर अदा करना, यही इसकी रूह है। और इसी तरह नजवा से रोका गया, छुप छुप के बातें करना ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं। और अल्लाह के यहाँ कोई फेवरेटिज्म नहीं, जो अच्छा करेगा अल्लाह उसको अच्छा कहेगा। फिर आयत 103 में नमाज पाबंदी वक्त के साथ फ़र्ज़ है, पढ़ें और कोशिश करें कि उसको वक्त पर पढ़ें। आयत 104, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहिए। और आयत 105 से 109, अल्लाह के नापसंदीदा लोग। ये है वो वाक़या जो मैंने शुरू में तमहीदन बताया था कि चोरी किसी ने की और इल्ज़ाम यहूदी पे लगा दिया। मुसलमान झूठा था और यहूदी सच्चा था। मुकदमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह ने आयतें नाजिल करके बता दिया कि इस मामले में सच और झूठ की बुनियाद पे देखो तो यहूदी के हक़ में फ़ैसला होगा। कैसे? देखिए, आज आप इनकार कर सकते हैं इस बात का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ मुसलमानों को कीमत उनकी फेवर करते थे, आप हमेशा हक़ का साथ देते थे। और इस पे भी बहुत सारी बातें आगे चल के हुई, इसी पे ये सारी आयात हैं। आयत 110-112, गुनाहगार मायूस और नाउमीद ना हो, कोई गुनाह करके बैठा हो और ये आयत सुने, वह मैं या मल सू अनु यस्लिम नफ्सा, और जो कोई बुरा काम करे और अपने नफ्स पे जुल्म करे, ला तक ना तू अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। सूरत ज़ुमर में भी आप पढ़ते हैं, तो गुनाहगार जब अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो जाता है, अल्लाह उसके लिए आसानियों के रास्ते खोल देता है। और आयत 113, नबी अकरम पर अल्लाह ताला का फ़जल था, यानी अल्लाह ताला ने यह आयात नाजिल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गलत फ़ैसले से बचा लिया। आयत 114, नजवा की पसंदीदा सूरत। नजवा कहते हैं गीबत को, इज्तमाई मामलात में गीबत करना, महफिल में भी दो लोगों का बाकियों की मौजूदगी में अकेले बात करना पसंदीदा नहीं है। तीन लोगों में से दो को बात करना, इसको तो हदीस में भी बिल्कुल मना कर दिया गया। आयत 115, तालिब इल्मों के लिए बड़ी अहम आयत होती है, ख़ास तौर पे फ़िक पढ़ने वालों की। इजमाए उम्मत की दलील इस आयत से ली जाती है, यानी जब किसी बात पे कुरान सुन्नत से कोई वाज़ेह हुक्म ना मिले तो फिर उस दौर के उलमाए कराम कैसे इजमा करें, वो इस आयत से दलील ली जाती है। आयत 116, इन अल्लाह ला यग़फ़िर अन युशरक बिही, पीछे भी गुजरी है ये आयत पिछले पारे में, यहाँ दोबारा आ गई, शिर्क का जुर्म माफ़ नहीं किया जाएगा। और आयत 117 से 121, शैतान की चालें। और 122 से 124, आमाल के बदले जैसी करनी वैसी भरनी। और आयत 125 से 126, मिल्लत इब्राहीम की पैरवी यही बेहतरीन तरीका है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह तुम भी क्या हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। और आयत नंबर 127 से 128, औरतों और यतीमों के हकूक। यस्तफ़तूनक फ़िन्निसा, अल्लाह ताला कैसे औरतों के हकूक़ की तर्जुमानी करते हैं। ख़ुलासा क्या निकला इन सारी बातों का, कि जब कोई बंदा इस दुनिया में रहकर किसी पे ज़्यादती करेगा, अल्लाह उससे ज़रूर बदला लेंगे। नुवल्ली ही मा तवल्ला, तुम जिधर मुंह करोगे अल्लाह तुम्हें उधर ही कर देगा, और शुख की बात है। और इसी तरह जन्नत सिर्फ ख्वाहिशात पर नहीं मिलेगी, और इसी तरह से जो नेकियों में हिस्सा डालेगा उसको उसका अजर मिलेगा। इसके बाद अब बिल्कुल पारे का ततिमा है, आयत 129 से 130, बीवियों के दरमियान अदल। ये तो आपको याद आ जानी है, ये वो आयत है जो आप सब ने घर जाके अपने शोहरों को सुनानी है कि देखें अगर शादी कर ली ना तो वलन तस्तती हुआ इन तादिल बैन निसा, आपसे इंसाफ नहीं होगा। ये हमारे इंडो पाक कल्चर की मुसीबत है कि हम मर्द की दूसरी शादी के नाम पे अल्लाह से भी नाराज़ हो जाते हैं, मियाँ से बेचारे से तो जो नाराज़ होना था वो होना ही था। बहरहाल पढ़ लीजिएगा 131 से 134, आसमानो ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। और इन सारी बातों को जितनी अभी हमने पढ़ी इनका खुलासा क्या है कि ईमान से निफाक एकदम नहीं आता, बीच में वो ग्रे के सारे शेड आते हैं, यानी वाइट से ब्लैक के बीच में ग्रे के शेड हैं, एकदम बंदा मुनाफिक नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने ऊपर नज़र रखनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि जैसी सोहबत वैसा ईमान, अपनी दोस्तियों को देखना है। और बहुत आगे हम पढ़ने वाले हैं मुनाफिकीन का जो इंजाम होगा, और पारे के अब जो अगली आयतें एंड किए हैं इसमें निफाक से निकलने के रास्ते हैं, तौबा भी है। और साथ ही साथ ये बता दिया कि अदल के बीच में जो रुकावट बनती है ना वो खुद पसंदी है। आयत 135 में अदल की गवाहियों की बात है, 136 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, इसको नोट कीजिए, यूनिक आयत है कुरान की। आपसे कोई क्विज में सवाल पूछ सकता है वो कुरान की कौन सी आयत है जिसमें ईमान वालों को ईमान लाने की दावत दी गई है। देखिए कोई सो रहा और आप कह दे सो जाओ, ये है वो आयत जो क्लैरिटी से, और इंशाल्लाह इस साल के दौरे कुरान में इस पर भरपूर बात होगी क्योंकि हमारा टॉपिक ही फेथ इन एक्शन है। हमारा मसला भी यही है, हम सब ईमान वाले, हमारे सब के बर्थ सर्टिफिकेट पे मुसलमान लिखा है, हमारे पासपोर्ट पे इस्लाम लिखा है, लेकिन वो इनहेरिटेड इस्लाम है, वो रिवाजी इस्लाम है। हम रस्मी मुसलमान हैं लेकिन रियल मुसलमान होने की यहाँ दावत दी जा रही है। आयत 137 to 139, ईमान और कुफर के बीच की कशमकश, बड़ी ज़बरदस्त आयत है। यहाँ से बिल्कुल पारा अब ख़त्म होने के करीब आ गया। आयत 140 से 141, दीन की तौहीन बर्दाश्त मत करो, जिस महफिल में जिस जगह अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जाए तुम चुप नहीं रह सकते, तुम्हें वहाँ अपना आप दिखाना पड़ेगा। 142 से 143, सुस्ती मुनाफिकीन की अलामतें, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह वहुवा खादिउहुम, नमाज़ों में सुस्ती और दिखावा मुनाफिकीन की आदत है, रियाकारी भी करते हैं। और आयत 144 से 145, मोमिनों के मुकाबले में कुफार को दोस्त मत बनाओ, यानी निफाक शुरू ही तब होता है जब गैर मुस्लिमों से राहो रस्म बढ़ने लगते हैं। और आयत 146, निफाक से बचने का नुस्खा, इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू, वो लोग जिन्होंने तौबा भी की और इस्लाह भी की और अपने आप को खालिस करते गए, अल्लाह आपको मुझे ऐसा ही कर दे। और ये है वो 147 आयत, मा यफ़लुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह बेहतरीन क़दरदान है। जब भी कभी शायद पे आई हूँ मुझे अपनी वो नोट्स की बड़ी डायरी बुक याद आ जाती है। एक आयत के ऊपर मेरा अलग कि हमारी 4 दिन बात हुई थी जब मैंने खुद एज अ स्टूडेंट अपने उस्ताद के साथ पढ़ी थी कि लोगों अल्लाह को क्या पढ़ी है कि वो तुमको अजाब दे। कभी माँ भी अपने बच्चे को आग में डालती है, अल्लाह के नबी ने भी पूछा था ये माँ अपने बच्चे को आग तंदूर में डाल सकती है, कहा नहीं, ये तो उसके जलते हुए तलवे इतना बर्दाश्त कर सकी। तो आपने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे पे इससे भी ज़्यादा मेहरबान है। तो क्या पता चला कि अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बतों में डूबी हुई ये आयत है कि आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे, सजा दे। अगर तुम शुक्रगुजार बने रहो और ईमान की रविश पर चलो तो अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ़ है। तो ये था पारा नंबर 5, हमने क्या सीखा, अपने पराए के साथ इंसाफ करना है, नफ्स की तंगी से बचना है। मोमिन को छुट्टी नहीं होती, मोमिन की छुट्टी कब होगी, जब वो कब्र में जाएगा और आवाज़ आएगी नम कनाओ मतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। फिर हमने सीखा कि सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना, कुरान पाक में तदब्बुर करना है, फ़ख्र गुरूर और तकब्बुर और ख़ुद पसंदी से बचना है और नफ्स की तंगी से बचना है। और मुनाफिक की निशानी नमाज में सुस्ती करता है, पढ़ता भी है तो दिखावे के लिए और उसमें भी अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है। सुब्हान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।